Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ishavasyamidam sarvam yatkincha jagatyam jagat. तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदः कस्य स्विद्धनम्। इस श्रुति के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की सर्वगतता, सर्वव्यापकता, अखंडता, नित्यानंदता, अविच्छिन्नता श्रुति व्यक्त करती है और साधक के लिए ये परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के विषय में अभिव्यक्ति, ये ज्ञान है। इसी ज्ञान को साधक को प्राप्त करना चाहिए। जो मुमुक्षु है इसी ज्ञान से ही वह मुक्त हो सकता है। श्रुति ने जो कहा है कि एकमेव द्वितीयं ब्रह्म न्य नानास्ति किंचन, जो अद्वितीय ब्रह्म है, अद्वय ब्रह्म है, उसका बोध प्राप्त करना वही सत्य है और वही तुम्हें सर्व बंधन से मुक्त कर सकता है। यही ज्ञान है, यही मुक्ति का साधन भी है, क्योंकि ये मुक्त ज्ञान है। ये स्वरूप ज्ञान है, परंतु जो रूप में, रूप के बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए रूप का निषेध करके स्वरूप को जानना है। ये जानना बाहर नहीं है, बाहर से नहीं है, बाहर का भी नहीं है। ये जानना अपना ही है, अपने में ही है और आप ही है। ये श्रुति के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। इसको बाहर जानने के लिए बाहर भागने की नहीं है, बाहर देखना बाहर होता है, परंतु जान करके यदि आप देखते हो तो तुम्हारा देखना सफल होता है, सार्थक होता है, आनंददायी होता है। और बिना जाने देखते हैं तो वो देखना निरर्थक है, निष्फल है और दुखदायी है। परिश्रम ही निर्माण होगा, दुख ही निर्माण होगा। इसलिए पहले श्रुति ज्ञान की बात करती है कि पहले परमात्मा को जानो, फिर परमात्मा को देखो। क्या? पहले परमात्मा को जानो कि परमात्मा क्या है। मंदिर में परमात्मा को देखते 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 हजारों साल हमारे बीत गए, कई जन्म निकल गए, परंतु हमें मिला कुछ नहीं। क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने परमात्मा को पहले जाना नहीं और हमने देखना चालू कर दिया और देखने को ही हम सत्य मान बैठे। यही तुम्हारे दुख का कारण है। देखना झूठा नहीं है। क्या? देखना झूठा नहीं है, करना झूठा नहीं है, जानना झूठा नहीं है, बोलना झूठा नहीं है, मानना झूठा नहीं है। झूठा तब है जब ज्ञान नहीं है। क्या श्रुति झूठ असत शब्द का प्रयोग नहीं करती है, मिथ्या शब्द का प्रयोग करती है। क्या मिथ्या का अर्थ वास्तविक झूठ नहीं होता है, असत नहीं होता है, अभाव नहीं होता है। ज्ञान रहित जो देखना है, ज्ञान रहित जो जानना है, ज्ञान रहित जो मानना है, या ज्ञान रहित जो सुनना है, वो मिथ्या है। क्या मिथ्या? क्या है वो मिथ्या है? अर्थात वो तुम्हारे दुख का निवारण नहीं कर सकता है। देखो राजा परीक्षित ने भी भागवत सुना है ना, और राजा परीक्षित के साथ साथ अनेक ऋषि मुनियों ने भी भागवत सुना, अनेक मंत्रियों ने भी भागवत सुना होगा, राजा परीक्षित के परिवार ने भी सुना होगा, गांव के अनेक प्रजा ने भी सुना होगा। सुना सबने है, परंतु मुक्त कौन हो गया? मुक्त केवल एक हो गया, एक कौन हो गया? केवल एक परीक्षित हुआ। ना कोई ऋषि मुनियों का वहां नाम आता है मुक्ति के विषय में, मुक्त हो गए, और ना उनके परिवार का, ना कोई मंत्रियों का, ना कोई प्रजा का। क्यों? सुना तो सबने है। क्या सुना? अन्य लोगों ने, किसी ने शब्द सुना, किसी ने अर्थ सुना, किसी ने वाणी कैसी बोलती है, कैसी गाती है, कला को सुना है ना, परंतु ज्ञान को सुना? ज्ञान को जिसने सुना वो मुक्त हो गया। ज्ञान को छोड़ करके यदि आप सुनते हैं, देखो एक प्रसंग आ जाता है, कई ऋषि मुनियों ने वेदों को कंठस्थ कर दिया, चारों वेदों को। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के कहने से, क्या, क्योंकि सभी देवताओं के गुरु जो है वैसे बृहस्पति है, परंतु बृहस्पति को भी जो ज्ञान दिया वो ब्रह्मा जी ने दिया, ब्रह्मा जी से ही, इसलिए तो वेदों को ब्रह्मा कहा है, ब्रह्म कहा है ब्रह्मा। और उस ज्ञान को प्रदान करने वाले ब्रह्मा है। तो सभी ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ कर दिया, और कंठस्थ करने के बाद फिर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि गुरुदेव भगवान, हमने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ये वेदों का ज्ञान प्राप्त कर दिया, हमने वेदों को कंठस्थ कर दिया, क्या वेदों को कंठस्थ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है? उन ऋषियों ने कहा कि हमने ज्ञान को प्राप्त कर दिया क्योंकि हमने वेदों को कंठस्थ कर दिया। वेदों को कंठस्थ कर दिया तो कहा कि हमने जो वेदों को कंठस्थ कर दिया, इसमें कोई गलती हो तो आप हमें फिर सुधारिए, तो हम आपको सुनाना चाहते हैं, मंत्रों को सुनाना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आप इतना वेद सुनने के लिए मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए, कि क्योंकि ब्रह्मा जी तो भाई सब प्राणियों के रचयिता, उनको तो उसी में उनका लगा हुआ है, कर्म में लगे हुए हैं, कहा कि भाई अभी मेरे पास तो सुनने का टाइम नहीं है, परंतु ऐसा करो तुम वो पीपल का वृक्ष है और उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, तो आप पीपल भगवान को सुना दो। और उसमें कहा कि भगवान वो पीपल को सुना देंगे, वो तो जड़ है, पीपल क्या सुनेगा, वो तो जड़ है। और हमारी जो जड़ वस्तु हम जो सुनाएंगे इतना परिश्रम करके, उसमें कोई गलती हो गई तो वो क्या बताएगा। कहा कि जाओ तुम बताओ, मेरी जो आज्ञा है तुम पालन करो। कहा कि कैसा बताएगा। कहा कि तुम्हारी ये गलती हो गई तो पीपल का एक पत्ता तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, दो गलती हो गई तो दो पत्ते गिरेंगे। तो उससे समझ लेना तुम कि भाई ये पत्ता गिर गया तुम्हारे सिर पर, तो समझ लेना कि ये गलती हो गई, उसको आप ठीक करो। तो इस प्रकार से बता दिया तो सब जाकर के बैठ गए पीपल के नीचे, परंतु वो वृक्ष को सुना रहे थे। किसको सुना रहे थे? वृक्ष को, भगवान को नहीं सुना रहे थे, क्योंकि उसके अंदर उनकी भगवत बुद्धि थी ही नहीं। ब्रह्मा जी की भगवत बुद्धि थी, इसलिए बता दिया था उन्होंने। तो वहां जैसा ही उन्होंने ऋग्वेद का पहला ही मंत्र का उच्चारण किया, अग्निमिले पुरोहितम, इतना उच्चार करते ही संपूर्ण पीपल के पत्ते गिर गए उनके ऊपर। एक मंत्र बोलते ही सब पत्ते गिर गए। अब वो तो घबरा गई कि ये तो इसका मतलब हम जो बोले पूरा गलत ही है। घबरा करके ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को बता दिया कि भगवान ऐसी ऐसी गुरुदेव ऐसी ऐसी बात हो गई और ये तो सब पीपल के पत्ते गिर गए, हमारा ये कई मंत्र का हमने उच्चारण किया और सब पीपल के पत्ते गिर गए, अब हम क्या करें। अब तो क्या ये हमारा जो मंत्र है, ये जो हमने उच्चारण किया या ये जो इनको कंठस्थ किया हमारा, ये बेकार का है, व्यर्थ है, निरर्थक है। कहा कि पत्ते गिर गए इसके मतलब निरर्थक है। कहा कि कैसा तुमने सुना है, कैसा बोले बताओ। उन्होंने ओंकार को छोड़ दिया। ओंकार तो मंत्रों की आत्मा है और ओंकार को छोड़कर के मंत्र का उच्चारण होता है तो वो निष्प्राण जड़ वस्तु है, निरर्थक है। क्या तो जड़ वस्तु का भार कितना भी सिर पर ढोगे तो भार ही होगा या कुछ होगा, भार के अलावा कुछ होगा नहीं। कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है तो तुमने तो हो ज्ञान को छोड़कर के अज्ञान को ही पढ़ रहे हो। तुम परमात्मा को तो छोड़ दिया, ओंकार को तो छोड़ दिया। ओंकार स्वरूप जो ब्रह्म है, परब्रह्म, उस पर परमात्मा को छोड़ करके तुम शब्दों का उच्चारण कर रहे हो, शब्दों को कंठस्थ कर रहे हो और शब्द को ही तुम ज्ञान मान रहे हो। ये तुम्हारी क्या है? निरर्थकता है। ये शब्दों की सार्थकता बिना परमात्मा के बिना नहीं हो सकती है, ध्यान रखो। क्या? चाहे शब्द हो, चाहे क्रिया हो, चाहे कुछ भी कर्म हो, कुछ भी धर्म हो। इसलिए श्रुति सबसे पहले ज्ञान का बात करती है। ईश्वर शब्द से उस ईश्वर को लाती है और ईश्वर की व्याप्ति को बताती है। इसका कारण क्या? आगे जो भी तुम करोगे वो तुम्हारा सार्थक हो, तुम्हें उसका फल मिले। हम मंदिर में जाकर परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा का नामोच्चारण करते हैं, भजन करते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु एक ज्ञान को छोड़कर। और श्रुतियों ने कहा कि एक को जान लिया तो सब जाना जाता है, एक को नहीं जाना कुछ नहीं जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसलिए परमात्मा का ज्ञान क्या है और कैसा ज्ञान, रूप के दृष्टि से नहीं, गुण के दृष्टि से नहीं, स्वरूप ज्ञान अर्थात परमात्मा का स्वरूप, जिसको श्रुतियों ने ओंकार के माध्यम से स्थूल भी, सूक्ष्म भी, कारण भी और अधिष्ठान भी, ये परमात्मा का संपूर्ण रूप है। संपूर्ण रूप, ये संपूर्ण रूप का अनुभव, संपूर्ण रूप का बोध पहला आवश्यक है। ज्ञान से युक्त होकर यदि तुम कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म ही नहीं बनता है, कर्म होने पर भी कर्म नहीं बनता है। इसलिए तो भगवान ने एक गीता में श्लोक दिया, कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मण्य च कर्मय, सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्मकृत। भगवान ने भी कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, परमात्मा का जन्म भी दिव्य और परमात्मा का कर्म भी और जन्म भी, दोनों भी दिव्य हैं और हमारे दोनों भी मलिन हैं, है ना? कर्म मलिन इसलिए जन्म मलिन, जन्म मलिन इसलिए कर्म मलिन। तो उसको दिव्य बनाने का उपाय क्या है? हम जन्म लेते हैं, किसी को पूछा तुमने अपने जन्म को देखा? कहा तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इसका मतलब क्या? अज्ञान में ही जन्मे हैं, अज्ञान से ही जन्मे हैं और अज्ञान का ही जन्म है। अंधकार से क्या प्रकाश की उत्पत्ति होगी क्या? शक्य नहीं। इसी प्रकार से अज्ञान से जन्म, ये अज्ञान ही तो मलिनता है, मलिनता। इसलिए हमारा जन्म भी मलिन और कर्म भी मलिन, और परमात्मा का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। क्यों? ज्ञान का जन्म ज्ञान रूप ही होता है और ज्ञान का कर्म भी ज्ञान रूप ही होता है। भगवान कृष्ण कभी कृष्ण नहीं बने हैं, ब्रह्म ही रहे हैं, ध्यान रखो। क्या? भगवान कृष्ण कभी मनुष्य नहीं बने हैं, मनुष्य दिखे जरूर है परंतु कभी मनुष्य नहीं बने हैं, वो परब्रह्म ही रहा है। समझे? ब्रह्म से अपने स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं हुए, थोड़े भी च्युत नहीं हुए। ज्ञान की ही अभिव्यक्ति इस शरीर के रूप में अभिव्यक्त हो गए हैं, ज्ञान अभिव्यक्त हो गया है। और वो भी कैसा अभिव्यक्त हुआ? अज्ञान रूप से अभिव्यक्त हुआ नहीं, ज्ञान रूप से ही, लीला रूप से ही अभिव्यक्ति। लीला है, लीला आनंद, लीला आनंद रूप होती है, आनंद रूप, और आनंद की आनंद में ही होती है, आनंद से ही होती है, आनंद की ही होती है। इसलिए लीला पुरुषोत्तम कहते हैं कि नहीं कृष्ण को। परंतु हमारा जब जन्म भी मलिन है तो हमारा कर्म दिव्य कैसा बने, इस मलिनता क्या है और मलिनता कैसी मिटे, और उसका साधन केवल एक ज्ञान है। क्या? किसका ज्ञान? परमात्मा को जान, तुम जानते हो तो तब जानोगे ना जब तुम पहले अपने को जानोगे। जो अपने को नहीं जान सकता है वो परमात्मा को कैसा जानेगा? परमात्मा को जानने के पहले अपने को जानना होता है। क्या? परमात्मा को जानने के पहले अपने को जानना पड़ता है, और जो अपने को नहीं जानता है वो परमात्मा को कतई नहीं जान सकता है। परमात्मा को कितना भी सुनाए, सुना परमात्मा को जाता है, देखा परमात्मा को जाता है, माना परमात्मा को जाता है, परंतु जानना आत्मा को होता है। ये ध्यान रखो। क्या? जानना आत्मा को होता है, और आत्मा को किससे जानना होता है? श्रुति वाक्यों से जानना होता है। क्या? जानना किसे होता है? जन्माने वाला साधन क्या है? जन्माने वाला साधन है श्रुति, और उस श्रुति के माध्यम से आपको जो जन्माते हैं उसी को तो गुरु कहा जाता है। जो श्रुति के द्वारा परमात्मा का ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान प्रदान करते हैं, वो ज्ञान ही क्या करता है, तुम्हारे अज्ञान को दूर कर सकता है। परंतु उसमें भी ध्यान रखो, श्रुति भी कितनी भी चिल्लाए, गुरु भी कितने भी बताए, परंतु तुम्हारा कोई पुरुषार्थ ही नहीं तो क्या करोगे? गुरु क्या करते हैं? अमृत को लाते हैं तुम्हारे मुख में डालने तक तो गुरु काम कर सकते हैं, परंतु निगलना तो आखिर तुम्हें पड़ेगा कि नहीं है? निगलोगे ही नहीं तो निगलोगे ही नहीं तो क्या तुम अमृत बन सकते हो, अमर बन सकते हो, मुक्त हो सकते हो, निर्भय हो सकते हो, दुख से रहित हो सकते हो? क्या हो सकते हो? कुछ नहीं हो सकते। ये जीव का पुरुषार्थ है, ध्यान रखो। जो उस अमृत को, ज्ञानामृत को जो अंदर उतार लेता है, और अंदर उतार करके उसको हजम कर लेता है। क्या? अंदर उतार करके जो हजम कर लेता है, जब हजम हो जाता है तब वो वैसा बनता है। समझे ना? ऐसा ही नहीं बनेगा। गुरु इतना काम कर सकते हैं, ईश्वर इतना काम कर सकता है, परंतु आत्म कृपा नहीं हो, आत्म पुरुषार्थ, अपना पुरुषार्थ नहीं हो तो तुम अपने को नहीं बदल सकते हैं, ध्यान रखो। इसलिए पुरुषार्थ करना है तो क्या पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ में दो वस्तु होती है, ग्रहण और त्याग। पुरुषार्थ में दो वस्तु होती है, प्रधानता ज्ञान की है और त्याग की गौणता है। पुरुषार्थ में त्याग की गौणता है और पुरुषार्थ की महानता है। पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान को अंदर उतार करके ज्ञान को हजम करना। और त्याग क्या है? ज्ञान के जो प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधकों को हटाना। क्या? जो ज्ञान के जो प्रतिबंधक है उस ज्ञान के प्रतिबंधकों को हटाना और ज्ञान को हजम करना। क्योंकि प्रतिबंधक यदि हट गए तब ही ज्ञान हजम होगा, अन्यथा नहीं। ये भी बताता हूं, ज्ञान को तुमने पी लिया मान लो, इसलिए तो कल मैंने बताया था कि दवा तब काम करती है जब पथ्य का पालन करोगे। पथ्य का पालन नहीं करोगे तो दवा कुछ काम नहीं करेगी। दवा कितनी भी लाख की दवा हो परंतु पथ्य का पालन नहीं करोगे तो दवा निरर्थक हो जाएगी। और फिर आप क्या करोगे? वो वैद्य को गालियां दोगे, है ना? मेरे को पैसे पैसे मेरा पैसा भी लूटा, टाइम भी मेरा बर्बाद हुआ, और डॉक्टर साहब तुम्हारी दवा ने तो कोई काम ही नहीं किया, बेकार की गई तुम्हारी दवा। अब बताओ,